तो अब हम क्लास सुनेंगे आदरणीय गीता बहन जी के द्वारा ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार।
ओम शांति।
प्यारे बाबा ने हमें अलौकिक जन्म देकर सच्चा ब्राह्मण बनाया है। ये हमारा मरजीवा ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण जीवन है। इस ब्राह्मण जीवन का आधार बाबा से हमारा सच्चा प्यार है, क्योंकि पहले हम ब्राह्मण जीवन की बात करेंगे, फिर ब्राह्मण संगठन की बात करेंगे। हम अंत तक सच्चे और पक्के ब्राह्मण बनकर के रहे, उसका मूल और मुख्य आधार है हमारा एक बाबा से सच्चा प्यार। भल हमें बाबा के ज्ञान से प्यार होता है, बाबा की सेवा से प्यार होता है, बाबा के परिवार से प्यार होता है, बाबा के तरफ से निमित्त बनी हुई बहनों से प्यार होता है, और बेशक ये प्यार हमें आगे बढ़ने में मददगार बनता है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मूल आधार है कि हमारा बाबा से कितना प्यार। क्योंकि हम जानते हैं कि हम सभी ब्राह्मण आत्माएं पुरुषार्थी हैं। हमारा पुरुषार्थ, हमारी धारणा एक रस तो नहीं चलते हैं, इसलिए ब्राह्मण परिवार से प्यार आज है और कल कुछ ऊपर नीचे देखते हैं तो हमारे प्यार में भी ऊपर नीचे आ जाती है। इसलिए वो भी ठोस आधार नहीं कहे। सेवा आज है, कल नहीं भी होगी। अभी परिस्थितियां अनुकूल हैं तो हम अनेक जगह पर जाते हैं, सेवा करते हैं, सेंटर में जाते हैं, आपस में मिलते हैं, लेकिन कल परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई, वातावरण विपरीत हो गया, तो सेवा का आज जो स्वरूप है वो कल नहीं भी रहेगा। इसलिए सेवा के आधार पर इस जीवन को चलाना वो भी ठोस बात नहीं। बाबा के ज्ञान से प्यार, बाबा की पढ़ाई से प्यार, ये बहुत जरूरी आधार है। क्योंकि जिसने ज्ञान की सत्यता को समझ ली है उसे बाबा में निश्चय हो जाता है वो और कोई मनुष्य आत्माओं के ज्ञान से भ्रमित नहीं होते। उनको स्पष्ट रहता है कि यही सत्य है। इसलिए ज्ञान से, पढ़ाई से प्यार वो इस जीवन में जरूरी आधार है, लेकिन इससे भी सूक्ष्म है कि हमारा भगवान से प्यार। जो भगवान इस ज्ञान का दाता है, अगर ज्ञान से प्यार है, पढ़ाई से प्यार है, तो ज्ञान अविनाशी है, ज्ञान सत्य है। उस आधार पर भी हम अविनाशी रूप से बाबा के ज्ञान में चलते रहेंगे, लेकिन हमारा वो चलना ज्ञान के बल से होगा। हर बात में, हर परिस्थिति में, कुछ भी बात होगी तो हम ज्ञान से खुद को समझाकर खुद को चला सकेंगे। लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत बिगर सहज विधि से हम चलना चाहते हैं तो उसका आधार है कि हमें उस बीज से बाबा से बहुत प्यार, हमें सतत बाबा के लिए अट्रैक्शन हो। तो एक धक से एक बाप दूसरा न कोई ये धारणा हो जाए। और कभी भी इस पुरुषार्थी जीवन में हम कोई भी देहधारी से प्रभावित नहीं होंगे, ना ही कोई देह संबंध हमें खींच सकेगा, क्योंकि हमारा सर्वस्व जो स्वयं बाबा है उससे ही हमें बहुत प्यार है। इसलिए ज्ञान में हमारा आना भल कोई भी कारण से हुआ हो, जैसे भाई बहने अपने अनुभव में सुनाते हैं कि हम अपने माँ बाप चलते थे तो हम भी चलने लगे, हमें बहनों का प्यार अच्छा लगता था, टोली अच्छी लगती थी, सेवा में बिजी रहना, अलग अलग प्रकार के कार्य करने के चांस मिलते हैं तो उसके आधार पर हम चल पड़े। तो भले हम किसी भी कारण से ज्ञान में आए, लेकिन अब जब हम आ ही गए हैं और हमने ज्ञान को अपने जीवन जीने का मार्ग बना लिया है, तो हमें इस जीवन के केंद्र बिंदु, आधार बिंदु जो कुछ है इस ब्राह्मण जीवन में, उनका जो मूल स्रोत है, उस बाबा से हमारा सच्चा प्यार हो, ये बहुत जरूरी। इससे ही हमारी बुद्धि की वफादारी भी आती है और मानसिक रूप से भी माया हमें चलित नहीं कर सकती। ये बहुत सूक्ष्म बात है, आप स्वयं भी रियलाइज करते होंगे और चेक करेंगे तो अपने आप में पाएंगे कि अगर हमारा ये फाउंडेशन पक्का नहीं है तो तो जरूर हमारे कोई न कोई संस्कार के परिवर्तन में हम रुक जरूर जाएंगे। लेकिन जैसे दादियां हम सबको बताती हैं कि शुरू में कोई ज्ञान स्पष्ट नहीं था, ना कोई सेवा थी, लेकिन हमें बाबा से बहुत प्यार था और उस प्यार में ही हम बाबा जैसे बनते गए। आज हम बौद्धिक रूप से ज्ञान को समझ कर खुद का परिवर्तन करते हैं, लेकिन शुरू में कोई ज्ञान का ना इतना विस्तार था, ना कोई गहराई थी, लेकिन एक ही चीज थी कि बाबा से प्यार था। और उस प्यार में सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए। इस सीजन की सबसे पहली मुरली 17 अक्टूबर की जो चली, उसमें भी बाबा ने ये बात बताई थी कि आज दुनिया में भी प्यार के खातिर लोग अपना जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो अगर ब्रह्मा बाप से प्यार है और उस प्यार में तुम अपने पुराने संस्कारों को स्वाहा करते हो तो वो क्या बड़ी बात है। और इसलिए बाबा ने कहा है कि हमें वो प्यार, क्योंकि कई बार आपने अपने आप में अनुभव किया होगा कि हम लॉजिकली बौद्धिक रूप से बाबा के ज्ञान को समझते भी हैं फिर भी परिवर्तन नहीं होते। जितना एक्यूरेट बाबा को हम समझते हैं, आज मुरली का हर महावाक्य हम समझते, पहले वो बात थी कि हम समझते नहीं है इसलिए हम नहीं सुधरते हैं। तो ऑटोमेटिक वो चीज जो बाबा ने कही ना कि कुसंग में आ जाते हैं वो रहेगा ही। हम सबसे मिलेंगे, सबके साथ हमें स्नेह होगा, लेकिन हमें अंदर से ये जागृति भी होंगी कि किसके संग का कितना रंग मुझे लगाना है और कहां मुझे डिटैच होके काम करना है। ये हमें खुद को ही अटेंशन रहेगा। हम अपने जीवन के मालिक बनकर हम अपने जीवन को चला सकेंगे। कोई हमें संभाले, कोई हमें रोके, कोई हमें टोके, ये आवश्यकता ही नहीं रहे, क्योंकि हम उस केंद्र से जुड़े हुए हैं। ये इतना सारा जो भी कारोबार चल रहा है, चाहे सेवा का चाहे ज्ञान का, लेकिन उसका बीज कौन है? वो तो बाबा है ना। और जब मुझे बाबा में कॉन्फिडेंस है कि बाबा कल्याणकारी है, बाबा सत्य है, बाबा मेरा साथी है, तो मुझे कभी वो प्रश्न ही मन में नहीं आएंगे कि मेरे साथ ऐसी कोई बात होंगी। सिर्फ मुझे अपने जीवन की जिम्मेवारी लेनी है कि मैं सदा उसकी याद में रहूं, उसके प्यार में रहूं और उनकी बताई हुई बातें मेरी बुद्धि में सदा स्पष्ट रहे। मुझे अपने ऊपर इतना अटेंशन देना। और ये चीज मेरे में है तो फिर ये ब्राह्मण परिवार कितना भी बढ़ जाए और उसमें कितने भी वैरायटी नंबरवार पुरुषार्थी बाबा के बच्चों को हम देखेंगे, लेकिन हमारे मन की स्थिति को कोई ऊपर नीचाई का प्रभाव नहीं आएगा। क्योंकि मेरा मतलब बाबा से है और बातों से नहीं है। ब्राह्मण परिवार के संगठन और साथ का तो हम शुक्रिया मानते हैं कि मुझे संपूर्ण बनने की जो पढ़ाई पढ़नी है उसमें ये परिवार मुझे साथ दे रहा है। आज मैं अकेली ज्ञान और योग की पढ़ाई करूं और मुझे 10 बाबा के बच्चे क्लास में भाई बहने मिल जाएं, तो नेचुरली मेरे उमंग उत्साह में तो फर्क पड़ जाएगा। इसलिए ये संगठन जिनको बाबा में निश्चय है, जिन्होंने भगवान को पहचाना है, जिनको स्पष्ट है कि ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, बाबा कौन है और संस्थाएं और गुरु क्या है, जिनको ये स्पष्ट है, चलो धारणा की बात छोड़ दें, उसमें नंबरवार है। लेकिन बाबा कहते हैं कि सत्य को परखने की, भगवान को पहचानने की, विवेक की आंख तो सब ब्राह्मणों को है ना। तो वो बाबा के बच्चे हमें साथ देते हैं पढ़ाई पढ़ने में, ज्ञान योग करने में, तो वो भी तो हमें एक मदद है। लेकिन बाकी जो नंबरवार पुरुषार्थ की बात है, उन व्यक्तिगत बातों में तो हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। इसलिए मुझे बाबा का ये महावाक्य सदा याद रहता है कि बच्चे संगठन में रहते हुए भी व्यक्तिगत पुरुषार्थ में रहना संगठन में है, क्योंकि वो हमारी सेफ्टी वॉल है, वो हमारी सेफ्टी की एक लकीर है। इसलिए रहना संगठन में है, लेकिन रहना मुझे व्यक्तिगत पुरुषार्थ में। तो ना आप व्यर्थ में जाएंगे पर चिंतन की बात रहेगी ही नहीं, क्योंकि व्यर्थ में हम तब जाते हैं जब पहले बुद्धि से हम उन व्यक्तियों में जाते हैं, हम उनसे कनेक्ट होते हैं, उनसे कंसर्न रखने लगते हैं। लेकिन जब हम संगठन में रहते हुए हम अपने लक्ष्य, अपने पुरुषार्थ, अपने बाबा और अपनी सेवा में रहते हैं, तो हमें और औरों की बातों से कोई मतलब ही नहीं। इसलिए संगठन बाद में है, पहले मुझे शक्तिशाली और नॉलेजफुल बनना है। हम खुद अपने इस जीवन की ऊंचाई को, बाबा की महानता को, बाबा की ज्ञान की सत्यता को, इस विद्यालय की महानता को हम खुद समझे, और ये जिम्मेवारी हम ले कि जब से हम ज्ञान में चलते हैं, लोग जानने लगे हैं कि ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, तो हमें समझना चाहिए कि अब हम व्यक्ति नहीं रहे हैं, अब हम संस्था बन गए हैं। और इसलिए व्यक्तिगत संस्कार के वश, व्यक्तिगत कमजोरी के वश आज मैं कुछ भूल करती हूँ, पर लोग तो यही कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ऐसा सिखाती है। आप ओम शांति में जाते हैं, वहां ये सीखते हैं। तो है मेरी व्यक्तिगत कमजोरी, है मेरी व्यक्तिगत भूल, लेकिन चूंकि मैं इस विद्यालय से जुड़ी हूँ, तो लोग तो विद्यालय का ही नाम बदनाम करते हैं ना। इसलिए जब हम इतने ऊंचे बाबा से जुड़े हैं, इतनी ऊंची इंटरनेशनल और प्योर आध्यात्मिक संस्था से जुड़े हैं, तो हमें भी अपनी साधारण से ऊपर उठकर महानता में स्थित होना होता है। एक बार बड़ी दीदी ने ये बताया था, बड़ी दीदी का ऑस्ट्रेलिया जाने का प्रोग्राम था और बहुत ही वहां उमंग उत्साह था, और कोई कारण से अचानक प्रोग्राम कैंसल हो गया तो वहां के भाई बहनें बहुत डिस्टर्ब हुए। तो बड़ी दीदी ने एक ही महावाक्य में इतनी अच्छी बात कही कि अगर महारथी को आप बुलाते हैं तो अपनी अवस्था भी महारथी की रखो। फिर ऐसी बात में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो हमें सतत ये रियलाइजेशन हो कि भगवान से हम पढ़ रहे, इतनी ऊंची संस्था से हम जुड़े हैं, इतने सत्य ज्ञान के मार्ग को हमने अपनाया है, हमने जीवन के योगी मार्ग को अपनाया है, तो हमारे में अब कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। सिर्फ बाबा से मिलने तक उमंग नहीं हो, लेकिन जो बाबा कहते हैं वो करने का भी हमें उमंग। जैसे इतिहास बताता है कि देश को आजाद करने के लिए लाखों लोगों ने जीवन कुर्बान किए, कितने सितम सहन किए, लेकिन जितनी आजादी को प्राप्त करने में लोगों ने कुर्बानी दी, उतनी ही अब अवेयरनेस उस आजादी को प्राप्त करने के बाद उसे संभालने में होनी चाहिए। तो हमने भी अनेक जन्मों से भक्ति की भगवान को पाने के लिए, लेकिन अब पाने के बाद हमारी और जवाबदारी बढ़ जाती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। इसलिए बाबा रोज मुरली में बहुत सहज शब्दों में हमें कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। बाबा कहते हैं, तुम जब यहाँ आकर बाप के सामने बैठते हो तो नॉलेजफुल बन के बैठो। यहाँ ऐसे ही आकर के नहीं बैठना, बच्चों को लक्ष्य याद रहे कि हम यहाँ क्यों आते हैं, हम रोज क्यों ज्ञान और योग का अभ्यास करते हैं। तो जब हम कर रहे हैं, हम मधुबन तक पहुंचे हैं, मीन्स हमने लक्ष्य बना लिया है, तो हमें रोज अपने को वो चीज याद करानी है और उस निष्ठा के साथ, सिंश्यारिटी के साथ हमें खुद चलना है और पुरुषार्थ करना है। तो ये ब्राह्मण जीवन बहुत अच्छी रीति से हम जी सकेंगे और सचमुच हम इस जीवन में अनेक आत्माओं को सही पुरुषार्थ करने के लिए, कराने के लिए उत्साहित और प्रेरित कर सकते। और ये आप सबका अनुभव होगा कि जब हम दिल से इस जीवन को स्वीकार करते हैं तो इस जीवन को जीना मुश्किल नहीं लगता। तो पहले तो ये बेस, ये फाउंडेशन हमें पक्का करना, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर मुझे ज्ञान से प्यार है तो मैं और जो भी अज्ञान है और मिथ्या ज्ञान के चक्कर है उससे मैं छूट जाऊंगी। अगर मुझे सेवा से प्यार है तो मैं जो पहले व्यर्थ बातों में, व्यर्थ कार्यों में अपना समय, शक्ति, धन बर्बाद करती थी, उससे मैं छूट जाऊंगी। अगर मुझे इस परिवार से प्यार है तो मैं जो अज्ञानी आत्माओं के कुसंग में आती थी उससे मैं छूट जाऊंगी। लेकिन जब तक मुझे बाबा से प्यार नहीं है, तब तक मेरी बुद्धि का पूर्ण समर्पण और माया मेरी बुद्धि को हिला न सके, वो स्थिति नहीं आ सकेगी। सूक्ष्म में कोई न कोई आकर्षण, खिंचाव बना रहेगा और उसके कारण मुझे अपनी स्थिति बनाने में मेहनत लगेगी। जब ये मूल बात पक्की हो जाएगी कि एक बाप दूसरा न कोई, तो फिर माया रहती ही नहीं, युद्ध का सवाल ही नहीं रहता। हम सहज ही पवित्रता की ऊंची स्थिति को प्राप्त करते जाएं और उसके बाद अब हमारे सामने दूसरी बात है कि इस ब्राह्मण संगठन में हमें चलना है, इसको एक संगठन बनाकर रखना है, तो उसका आधार है हमारा आपस में आत्मिक प्यार। क्योंकि बाबा ने हमें इकट्ठा क्यों किया है? अगर सिर्फ हमारे अपने जीवन बनाने की बात होती तो बाबा हमें कह देता था ना कि चलो भाई, हरेक को सत्य ज्ञान मिल गया है, अब अपने अपने घर में बैठ के पुरुषार्थ करो। हा? लेकिन बाबा ने क्यों विद्यालय बनाया? बाबा ने क्यों इसको परिवार का स्वरूप दिया? क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल हमारे अपने जीवन को बनाने का नहीं, लेकिन बाबा का मददगार बनने का भी, विश्व कल्याण का भी लक्ष्य। बाबा का ज्ञान हमें केवल स्वकेंद्री नहीं बनाता है कि हम केवल खुद का ही उद्धार करें, लेकिन नहीं, बाबा हमें कहते हैं कि हमें समग्र मानव जात का कल्याण करना है। और जहां सारे विश्व के सेवा की बात है तो एक अकेला तो नहीं कर सकता है ना? आज एक ब्रह्मा बाबा के होते हुए शिव बाबा ने अनेक ब्राह्मण बच्चों को तैयार किया। इससे क्या सिद्ध होता है कि कार्य कोई एक से नहीं होना है, हम सब के मिलकर करने पर होना। आपकी, मेरी, इसकी, उसकी, सबकी विशेषताएं जब बाबा के कार्य में लगेगी, तब हम इस कार्य को संपूर्ण कर सकते। तो बाबा ने हमें इकट्ठा किया है, वो एक संगठन रचने के लिए। कहते ना भाई, ये कोई जमघट नहीं है, भीड़ नहीं है, ये संगठन है। जमघट और संगठन में अंतर ये होता है कि जो जमघट में भीड़ इकट्ठी होती है उसमें ना कोई एम ऑब्जेक्ट होता है, ना डिसिप्लिन होती है। लेकिन हम सबको जो बाबा ने इकट्ठा किया है उसमें दोनों बातें हैं, एम ऑब्जेक्ट भी है। एम ऑब्जेक्ट क्या है? कि हमें सबको मिलकर स्वयं को संपूर्ण बनाना है और बाबा के कार्य को भी संपन्न करना है। दोनों बातें, एक अकेला संपूर्ण निर्विकारी नहीं बन सकता। द्वापर युग में बहुत एक अकेले अकेले निकल गए घर बार संसार छोड़ के, लेकिन वो विकारों पर विजयी नहीं बन सके। जब संगठन में हम रहते हैं तब हमें पता चलता है कि मेरे में ज्ञान कितना है, मेरे में गुण कितने हैं और मेरे में मेरी अवस्था क्या है। उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट तो संगठन में ही मिलता है। इसलिए एक तो संगठन की आवश्यकता क्या है, है ना भाई। संगठन बनाए रखने के लिए हम मेहनत तो तब करेंगे ना जब हमें पहले रियलाइज हो कि इस संगठन की आवश्यकता क्या है। तो वो बात मैं समझा रही हूं कि बाबा के तरफ से हमें ये लक्ष्य दिया है कि हम आपस में ऐसी रूह रिहान करें, आपस में मिलकर ऐसा पुरुषार्थ करें, आपस में मिलकर उन्नति का ऐसा प्रबंध करें ताकि हम हरेक अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सके। और दूसरा लक्ष्य बाबा ने ये दिया है कि हम सब मिलकर, अर्थात हम सब अपनी विशेषताएं, गुण, कलाएं, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, तन, मन, धन, जो कुछ है वो मिलकर सेवा में लगाएं और विश्व की सेवा को संपन्न कर। और हम खुद भी रियलाइज करते हैं कि हमें इस संगठन की आवश्यकता है। एक अकेला पुरुषार्थी अलबेला हो सकता है। जब तक हम संपूर्ण निर्दोष न बने तब तक हमारे जीवन पर किसी का अटेंशन जरूरी है। और इसलिए ऐसे निमित्त बड़ों का, अच्छे पुरुषार्थियों का, महारथियों का अटेंशन हमारे जीवन पर हो ताकि चलते चलते कहीं कभी हमें माया आ जाए तो वो हमें बचा ले, वो हमें सेफ कर दे। इसलिए हम तो अपने अनुभव से यही बताएंगे कि बड़ों के नजदीक रहना चाहिए, महारथियों के साथ रहना चाहिए। कई दूर दूर रहते हैं कि भी बड़ों से दूर रहो, क्योंकि बड़ों के साथ चलने में नेचुरली हमें हर प्रकार की करेक्शन मिलेगी, हर प्रकार की सूक्ष्म बातें वो समझाएंगे। इसलिए हम हमारे जैसे ढीले ढालों के साथ ही चलते रहते हैं, जो वो गिरे तो हम भी गिरते हैं। इसलिए संगठन की नजर रहे, निमित आत्माओं की हमारे पर नजर रहे, बड़ों के हम समीप रहे, ये बहुत कल्याणकारी बात है। तो पुरुषार्थ के हिसाब से मुझे इस संगठन की जरूरत है। मैं कितना भी शक्तिशाली हूं, कितना भी बुद्धिशाली हूं, कितना भी मैं कैपेबल हूं, लेकिन एक अकेला सब कुछ तो नहीं कर सकता है। इसलिए हमें सबकी आवश्यकता है, ये हम रियलाइज कर। और दूसरी बात, सेवा के हिसाब से भी हमें संगठन की जरूरत है। आज मुझे निश्चय है, मुझे उमंग है, मैं बाबा का सत्य ज्ञान सबको देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे साथी भी तो चाहिए, मदद भी तो चाहिए। कल की ही साकार मुरली में बाबा ने कहा था कि सर्विस करनी है तो सर्विस के हथियार भी होने चाहिए। तो सर्विस के हथियार में सबसे बड़ा एसेट्स तो बाबा के बच्चे हैं ना, और इसलिए मुझे संगठन की जरूरत। तो अब जबकि हमें संगठन की जरूरत है, इस ब्राह्मण परिवार की जरूरत है, तो ये संगठन बना रहे, उसमें एकता तालमेल सहयोग बना रहे, और हमारा ये संगठन हर सेंटर वाइज अच्छी रीति से काम कर सके, उसके लिए जरूरी है एक बात कि हमें जितना बाबा से प्यार है उतना हमें आपस में भी रूहानी प्यार। आज जो भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए कंपनीज के ग्रुप्स आते हैं तो हम उनको क्या सिखाते, उनके प्रॉब्लम्स वो बताते हैं कि भाई लोग मिलके काम नहीं करते, एक दो की विशेषता नहीं देखते हैं, एक दो के अवगुण देखते हैं, इसलिए मिलके काम नहीं कर पाते। तो हम लोग उनको क्या ज्ञान सुनाते, यही सुनाते हैं ना कि आज टीम स्पिरिट क्यों नहीं, आपस में कम्युनिकेशन क्यों नहीं है, क्योंकि आपस में एक दो के लिए प्यार नहीं। तो हम जिस सेंटर में हैं, ठीक है हमारा बेहद विश्व से प्यार हो, बेहद ब्राह्मण परिवार से प्यार हो, लेकिन उस प्यार की शुरुआत तो मैं जहां हूं वहां से करनी होगी ना। मुझे मधुबन से प्यार है, दादियों से प्यार है, लेकिन जिस सेंटर में मैं जा रही हूं वहां मुझे प्यार नहीं है, वहां हम आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो हम कैसे काम कर सकेंगे। इसलिए लौकिक चाहे अलौकिक, जिनके साथ मुझे रहना है, जिनके साथ मुझे जीना है, जिनके साथ मुझे काम करना है, चाहे लौकिक काम करना है चाहे ईश्वरीय सेवा का काम करना है, मुझे उस लोकल लेवल पर रूहानी प्यार चाहिए। इसलिए हमारे विद्यालय का ये स्लोगन है ना कि थिंक ग्लोबली लेकिन एक्ट लोकली। हम सारे विश्व का सोचे लेकिन शुरुआत लोकल लेवल से करें। इसलिए लौकिक परिवार में मुझे जो भी संबंध मिले हैं, जो भी सिचुएशन मिली है, कार्य क्षेत्र में जहां मैं नौकरी धंधा करती हूं वहां मुझे जो साथी मिले हैं, कर्मचारी मिले हैं, और इस ईश्वरीय परिवार में जो निमित बहने मुझे मिली हैं और जो ब्राह्मण परिवार मुझे मिला है, पहले मैं मुझे दिल से स्वीकार करना है कि वो ही अच्छे हैं और वो ही कल्याणकारी। जब तक हम दिल से एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक हमारी बुद्धि कंपैरिजन करती रहती है कि वहां अच्छा है यहाँ ऐसा है, वहां ये है यहाँ ये नहीं, पर वहां जाकर पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि वो अच्छा है यहाँ नहीं। क्योंकि हर कोई पुरुषार्थी, और मेरा मतलब तो सबकी अच्छाइयों से है ना, कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा कि आत्माओं को फॉलो करो लेकिन उनकी विशेषता को फॉलो करो। ज्ञान इतना ऊंचा है और ज्ञान इतना स्पष्ट है कि हमें कहीं भी मुंझने की कोई बात नहीं। इसलिए रूहानी प्यार, बाबा ने क्या कहा, आत्मा को देखो और आत्मा के भी ओरिजिनल स्वरूप को देखो। कल बाबा ने मुख्य अंडरलाइन कौन सी बात कराई कि अगर खुद को निर्विघ्न करना है तो मुख्य अंडरलाइन बाबा ने यही कराया ना, आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मिक दृष्टि से बोलो, आत्मा की गुण स्थिति को देखो। और ड्रामा अनुसार आज की साकार मुरली में भी कौन सा पाठ बाबा ने पक्का कराया, आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो ऑटोमेटिक जब रूहानियत की बात है तो उसमें और कुछ आ ही नहीं सकता है, प्यार ही आता है। इसलिए रूहानी प्यार सिर्फ प्यार नहीं, लौकिक प्यार नहीं, मानवीय लेवल का प्यार नहीं, उसमें भी फंस जाएंगे। इसलिए रूहानी प्यार, रूह बनकर रूह से बात करती हूँ, यह है सेफ्टी का साधन। न्यारा बनकर प्यारा बनना है, ये है विधि जो बाबा ने हम बच्चों को सिखाई। इसलिए बाबा के बच्चे, ब्राह्मण परिवार के भाई बहने जो भी हैं, जैसे भी हैं, पर उन्होंने भगवान को तो पहचाना है ना। कई बार हमारे भाई बहने मुख से ऐसा बोल देते, जब आपस में कभी एक दो के अवगुण, पुराने संस्कार या कोई मैनर्स नहीं है, ऐसा व्यवहार जब देखते हैं तो बाबा के बच्चे भी कई बार मुख से कह देते हैं कि इससे तो अज्ञानी अच्छे होते, ऐसा बोल देते हैं ना। लेकिन नहीं, आप सूक्ष्मता से सोचो कि दुनिया में कोई कितना भी अच्छी मैनर्स वाला है, कितने भी अच्छे गुण वाला है, लेकिन उनसे प्यार, उनसे संग आपको कहां ले जाएगा? कलयुग में ही ले जाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी मैनर्स है, लेकिन भगवान को तो नहीं पहचाना है, समय को तो नहीं पहचाना है। इसलिए व्यक्तिगत लेवल पर वो बहुत अच्छे हैं और सचमुच अच्छे होते हैं, उन्होंने बातचीत करने के मैनर्स होते हैं, लेकिन वो सोल कॉन्शियस तो नहीं है ना। तो उनका संग तो मुझे देह भान में ही ले जाएगा, देह संबंध में ही ले जाएगा, इस दुनिया में ही ले जाएगा। इसलिए यहाँ चाहे कितने भी नंबरवार है, लेकिन मूल बेसिक सत्य को तो समझते है ना कि भगवान कौन है, समय कौन सा चल रहा है। इसलिए इनका संग मुझे फिर भी बाबा से ही पकड़ के रखेगा, मुझे संगम युग में रखेगा, कलयुग में तो नहीं ले जाएगा। इसलिए हमें एक दो की इम्पोर्टेंस और वैल्यू का पता, तो हमें एक दो के लिए रिस्पेक्ट रहेगा, प्यार रहेगा, और उस नजर से हम एक दो को देख सकेंगे और एक दो की मदद ले सकेंगे और तब हमारा संगठन शक्तिशाली बने। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा के स्नेह की सब्जेक्ट में तो मेजॉरिटी बहुत अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, ये रिजल्ट बाबा देते हैं, लेकिन माला तो हमें आपस में बनानी है ना, माला तो हमारी बननी है ना। इसलिए मणका मणके से नजदीक आए वो भी जरूरी। तो जब अवगुण देखते हैं, कमजोरी देखते हैं, तो हम एक दो से दूर होते हैं। गुण देखते हैं, विशेषता देखते हैं, तो एक दो के समीप आते हैं, प्यार होता है। तो हम तो ये सोचते हैं कि बाबा ने सारे विश्व की करोड़ों आत्माओं में से चुन चुन के हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है, वो किस लिए किया है? क्या एक दो के अवगुण देखने के लिए किया है? हाँ, कि हम एक दो के नजदीक आते हैं तो नेचुरली हम एक दो की कमियों को जल्दी जानते हैं, तो पर वो देखने तो हम नहीं आए। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छाई का चश्मा पहन। और एक ही लक्ष्य, कल बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा मतलब व्यक्ति की विशेषता से और बात से नहीं। इसलिए हमारा आपस में मिलना भी रूहानी होना चाहिए। अक्सर करके भाई बहने ज्ञान में आते हैं, एक दोस्त से मिलते हैं, फिर क्या होता है, आपस में ही जुड़ जाते हैं, बाबा एक तरफ रह जाता है। भाई हम आपस में मिले किसके कारण? बाबा के कारण मिले। वो बाबा एक तरफ रह जाता है और हम ही एक दो की गहराई में ज्यादा जाने लगते। बाबा कहते हैं ज्ञान की गहराई में जाओ, उसके बजाय हम ज्ञानियों की गहराई में जाते हैं कि फलाना ज्ञानी ऐसा है और फलाना ज्ञानी ऐसा है। बाबा ने तो ज्ञान की गहराई में जाने के लिए कहा है। और हमें याद रहे कि हम आपस में मिले हैं बाबा के कारण, तो बाबा बीच में हैं, क्योंकि हम एक मत होंगे, हम सहयोग की भावना से चलेंगे तो कोई हमें तोड़ नहीं सकेंगे। बेशक हम सब निश्चिंत है कि बाबा हमारा बैठा है, बाबा की छत्र छाया में हम सब हैं, ऐसी कोई बात होनी नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज भी क्या है, है ना? हमारा फर्ज भी तो ये है ना कि हम इसको बना कर चले, इस संगठन को मिला करके चल। आज हमें लौकिक संबंध में प्यार होता है तो अपना भाई अपनी बहन कैसी भी हो, हम वो संबंध तो निभाते हैं ना। ऐसे थोड़ी है तुम ठीक नहीं हो निकल जाओ, मुझे दूसरी बहन चाहिए, नहीं। जो कर्म के हिसाब से एक माँ बाप के हम बच्चे भाई बहन हैं तो वो है ही, उसमें कोई फेर बदल नहीं होता है ना, हम उसको स्वीकार करते। दूसरी बात कि हमें प्यार है, इसलिए हम अपने भाई बहनों की निंदा पर चिंतन नहीं करते, उसकी भूलों को फैलाते नहीं, उनकी कमियों को भरने की कोशिश करते।
तो अगर हमें आपस में स्नेह होगा तो ये निंदा और पर चिंतन का जो डिपार्टमेंट है वो खत्म हो जाएगा, है ना? क्योंकि स्नेह की निशानी है कि हम उसकी कमी को फैलाएंगे नहीं, समाएंगे। और व्यक्तिगत हम ये भी सोचे ना कि मेरी कोई भूल होती है तो मेरी भूल को सब फैलाएं वो अच्छा लगेगा, या उसको फुल स्टॉप दे वो अच्छा लगेगा। हम चाहेंगे ना कि भाई क्यों बार बार आप वही बात करते हो, उस बात को समा दीजिए, फुल स्टॉप दे दीजिए। तो दूसरों के अवगुण और कमजोरी की बातें फैलाने का हम क्यों शौक रखते, वहां भी तो हम फुल स्टॉप देते। बल्कि बाबा कहता है कि सच्चा प्यार है तो जिसकी कमी है, भूल है, व्यक्तिगत उनसे मिलकर शुभ भावना और नम्रता के साथ उनको अटेंशन दिलाई। कमी इसकी है और बात मैं उसको कर रही हूं, इससे क्या फायदा? और अगर आपको लगता है कि हम शुभ भावना से नम्रता के साथ अटेंशन दिलाते हैं वो भी उसको अच्छा नहीं लगता है, तो बाबा ने हमें सिखाया है कि आप साक्षी बनो, न्यारे बनो, मन में शुभ भावना रखो। जब आप कुछ कर नहीं सकते हैं या आपके करने से कोई रिजल्ट नहीं आता है तो आप डिटेच हो जाइए, शुभ भावना रखिए। इसलिए आज बाबा ने कहा है कि आपस में मतभेद में आकर पढ़ाई को नहीं छोड़ना, कहा है ना? इसलिए इस संगठन के खातिर हमारा झुकना जरूरी है, कुछ सहना जरूरी है, कुछ समाना, एक दो से एडजस्ट करना, ये सब जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि हम क्यों करें, क्या जरूरी? इसलिए जरूरी है कि बाबा के खातिर यज्ञ की सेवा के खातिर हमारा संगठन एक मत, एकता, आपसी सहयोग और स्नेह का हो वो जरूरी, ताकि हम इस यज्ञ को भी सलामत रख सकें और बाबा के कार्य को पूरा कर सके, है ना? अगर हम ही आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दो की कमजोरी देखेंगे तो हमारा ही संगठन कमजोर बन जाएगा, तो फायदा क्या है, है ना? हम यहाँ इसलिए तो नहीं आए हैं, ये करने तो नहीं आए हैं। इसलिए हम तो सदा ये सोचते हैं कि जिस बाबा ने हमें इतना दिया है उस बाबा के यज्ञ को बनाए रखने के लिए हम जो भी कर सकते हैं वो करें बस। जैसे लौकिक में भी माताएं क्या सोचती कि भाई सास कैसी भी हो, ननद कैसी भी हो, अपना पति तो अच्छा है, उसके कारण भी उस ससुर वो ससुराल से अपना निभा के चलते हैं ना। तो जिसके साथ हमने जीवन जोड़ा है वो बाबा तो सबसे महान है ना, वो तो सबसे सुख देने वाला है। तो उसके खातिर। मुरली में कौन सा गीत हम सुनते हैं? तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, क्योंकि तुझसे प्यार है ना, इसलिए तेरी हर रचना से प्यार है, तेरे हर कार्य से प्यार है, तेरी हर आज्ञा से प्यार, तब तो प्यार कहेंगे, नहीं तो प्यार कहा, सिर्फ बाबा बाबा करना और प्रैक्टिकल कुछ भी एडजस्ट नहीं करना, वो कोई प्यार थोड़ी है। और एक बात, सेटिस्फेक्शन जो बाबा ने परसों मुरली चलाई कि चलो कभी मुझे कोई एक चांस कम मिला, दूसरे को एक चांस ज्यादा मिला, कोई बात नहीं, अपना ही तो भाई है, अपनी ही तो बहन है, बाबा का काम होना चाहिए वो करे कि मैं करूं, काम होना चाहिए ना बाबा का। और अगर हम अंदर से संतुष्ट रहते हैं, दूसरा कोई निमित्त बन के करता है तो व्यर्थ मन नहीं चलाते हैं, द्वेष नहीं करते हैं, तो मेरा अनुभव ये है कि ऑटोमेटिक बाबा हमें चांस देता ही है। इसलिए मुरली में महावाक्य था कि आपका ये संतुष्टता की गुण की धारणा ऑटोमेटिक आपको चांसलर बना देता है, क्योंकि जब आप बहुत डिमांड करेंगे इनको चांस मिला है तो मुझे क्यों नहीं मिला, इनको ये तो मुझे क्यों नहीं है, तो और ही लोग दूर रहेंगे कि भाई इनकी डिमांड बहुत होती है, इसलिए इनको इन्वॉल्व ही नहीं करो। हाँ, हम एवर रेडी है बाबा के हर कार्य के लिए, लेकिन फिर भी हमें चांस ना मिलके दूसरे को मिलता है तो हमें खुशी है, क्योंकि वो अपना ही भाई है और काम होना चाहिए बाबा का, मेरे निमित्त हो या उनके निमित्त। तो अगर ये बड़ी दिल रखते हैं, मन शांत रखते हैं, संतुष्टता से चलते हैं, तो एक तो डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है और दूसरा अपने आप लोग हमें चांस देंगे, ये प्रैक्टिकल रिजल्ट आए। उस समय हमें थोड़ा सा खुद को पीछे करना होता है, त्याग करना होता है, लेकिन रिटर्न में ऑटोमेटिक हमें चांस मिलते। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम ज्ञान की गहराई रखते हैं, आपस में रूहानी प्यार रखते हैं, फिर भी हम एक दो के साथ अलौकिकता से चलते हैं, डिटैच भी रहते हैं, बाबा में हमें विश्वास होता है, तो इस संगठन को बना के रखना और उसमें खुद को चलाना सहज हो जाता। तो ये आर्ट, ये कला हमें सीखनी होगी, है ना? क्योंकि बाबा का ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का है ना? बाबा तो बेहद का बाप है, पहले फिर भी हम लिमिटेड फैमिली में थे, लिमिटेड लोगों से हमारे रिश्ते नाते थे, लेकिन बाबा के बने उसके बाद तो बेहद के संबंधों में आ गए। तो जब बेहद में आते हैं तो हमें अपनी मूल सार स्वरूप की स्थिति में रहना होता है, तो हम सफलता से चल सकते। इसलिए कल हमें बाबा ने ये काम दिया है कि ऐसी एक्स्ट्रा हिम्मत जो करेंगे, कौन सी हिम्मत करनी है, कोई कुछ भी दे, हमें दुआएं देनी है ना, माना कोई कैसा भी व्यवहार करे, हमें हम भगवान के तरफ से निमित्त है ना, इसलिए मुझे तो भगवान जो देता है वो ही देता है, क्योंकि मैं उनके तरफ से निमित्त, मैं यहाँ अपने तरफ से तो निमित्त नहीं हूं ना। आज मान लो मैं एक सेंटर की निमित्त बहन हूं और उस सेंटर में मेरे ये 50 भाई बहने हैं, तो मैं अपनी इच्छा से तो निमित्त नहीं हूं ना, मैं तो बाबा की तरफ से निमित्त हूं, इसलिए बाबा जो देता है वो ही मुझे देता है, वो चाहे कुछ भी दे, हमें अपनी महानता को नहीं छोड़। और दूसरा, मैं हमेशा ये सोचती हूं कि मुझे जो व्यवहार करना है वो मुझे मेरे अपनी वैल्यूज के आधार पर करना है, मुझे अपनी डिसिप्लिन के आधार पर करना है, मुझे मेरे जीवन के सिद्धांतों से करना, न कि वो ऐसा व्यवहार करता है तो मैं ऐसा व्यवहार करूं, ये तो कोई मीनिंग ही नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे व्यवहार का आधार उसका व्यवहार है क्या, और उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, मीन्स मेरे अपने कोई सिद्धांत नहीं है, मेरे जीवन का कोई वैल्यू निश्चित नहीं है क्या? और अब मेरे वैल्यूज वही है, मेरे जीवन के सिद्धांत वही है जो बाबा की श्रीमत है, तो ये हिम्मत अगर हम करके दिखाएंगे तो बाबा की मदद से हम भी अपनी एडवांस स्टेज पर पहुंच सकेंगे, और हम पहुंचेंगे तो हमें देख देख अपने साथी, अपने भाई बहने सब पहुंचेंगे, क्योंकि आखिर ज्ञान तो है ना हरेक की बुद्धि में, और हरेक यहाँ आए हैं कुछ बनने के लिए, है ना, नहीं इसलिए बन रहे हैं कि कोई बना हुआ देखने में नहीं आ रहा है, इसलिए हर कोई ढीले डाले हो रहे हैं, पर हमारे में से कोई थोड़े भी अगर दृढ़ता से खुद को बना लेंगे तो ये सब अपने आप सीधे हो जाएंगे क्योंकि समझदार तो है ना सारे, बाबा के बच्चे तो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, थोड़ा एक दो को देखते हैं इसलिए टेढ़े मेढ़े होते हैं जब देखेंगे यही सीधे हो गए तो अपने आप सोचेंगे चलो भाई अब हम भी ठीक हो जाते हैं। तो ये है हिम्मत, कि मुझे थोड़ी हिम्मत करके खुद को बना देना है तो बाकी काम ऑटोमेटिक हो जाए। तो बाबा से सभी मिल चुके हैं, दादी जी से भी मिल चुके हैं, और मैं समझती हूं कि अब वापस जाने की बातें बुद्धि में आ रही होंगी कि अब फिर हमें जाना है अपने अपने सेंटरों में, लेकिन वहां जाके अब हमें कैसे चलना है व्यक्तिगत तौर पर और संगठन के हिसाब से, ये दोनों बातों का यहां से ही पक्का करके सब जाएंगे तो हम सब मिलकर बहुत अच्छा रिजल्ट बाबा को दे सकेंगे। ओम शांति।